तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातरयाजिमा पुत्रे तन्मयतया करोमि तं सर्वभूतहृदयम् वैवास्मि त्वैवास्मि न जिमामि त्वया विना राजे
ভালো তাহলে ওই সম্বন্ধে তোমরা বলো আমরা শুনি সকলে আজ বহুত হি পবিত্র দিন হ্যাঁ টুডে ইজ ভেরি অস্পিশিয়াস ডে বার্থডে প্রভাব ডে অফ রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অ্যান্ড রঘুনাথ ভট্ট সো মেনি ডে সো ইন ব্রিফ উই উইল স্পিক অ্যাবাউট সংক্ষেপ মে উনকে সম্বন্ধ মে হাম লোক আজ তো ইন্ডিয়ান ভক্ত লোক হাই নেই হাই নেই ওই দো এক কিন্তু ওরা অত লোক এসেছে ইয়ে হাধবপ্রিয়া মাধবপ্রিয়া কাহানি কাহা হ্যাঁ মাধবপ্রিয়া মাধবপ্রিয়া কাহা ইধার আও বহুত আগে রসানন্দ জি কিছু বলো ইংরেজি বলবে ইংরেজি চলো বল পনেরো মিনিট সে বেশি নেই বহু সে বক্ত আলু পনেরো মিনিট वही से बोल
ज्ञानांजन भक्ति योग मसुमति अपना दास श्री जीव गुरुगमंद
माता प्रिय दरो
दरो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद भगवान बिल्ला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में अनंत कोटि साक्षांत दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिपराज का आचार्य चतुर्दंड स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णव सभी को चरण में राजाधार्जन को प्रणाम। आज हमारी गौड़ीय संप्रदाय के सर्व स्वामी के अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे संप्रदाय के जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को देख करके अपना मनोभीष्ट को एक एक भक्तों को देख करके एक एक वस्तुओं को जगत में स्थापन किया। जैसे जब हम अपना गुरु जी को जय देते हैं हम कहते हैं रूपानुग आचार्य वर्ज्य स्वामी श्री श्रीमानुभक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। हम रूपानुग वर्ज्य कहते हैं लेकिन रूपानुग वर्ज्य में जो सर्वोत्तम है जो कि अगर मुक्त प्रग्रह पृथ्वी में विचार किया जाए तो रूपानुग वर्ज्य का जो सर्वोत्तम है ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। अगर हमको रूपानुग क्या है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में जो अनर्पित चरित चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसान समर्पित श्रियम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में जो उन्नत उज्ज्वल रस की श्री की जो सौंदर्य को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे वो क्या चीज है अगर वह चीज को अगर हमें समझना तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन उनको सीखा तो हमको अवलोकन करना पड़ेगा तभी हम उन्नत उज्जवल रस का जो श्री है महाप्रभु जो महा नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते वो जो नमो महाबदान की महाबदानत्व तो, अगर हमें समझना तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की ग्रंथों को हमें अवलोकन करना पड़ेगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन दो तरह से देखने को मिलता है। यद्यपि हुए श्री निकुंज के श्री रति मंजरी है लेकिन उनका जीवन हुए जगत में दो तरह का उनको जीवन देखने को मिलता है। एक साधक अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है साधक की जीवन कैसे होनी चाहिए साधक को धीरे धीरे भगवत भक्ति जगत में उसको कैसे धीरे धीरे आरूढ़ करनी चाहिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये एक अनूठा एक दिव्य आदर्श है। इनका जो जीवन है कैसे एक साधक धीरे धीरे भक्ति जगत में बढ़ता है पहले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते भगवत भक्ति केवल भक्तों का संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए पहले उनका जीवन वे पहले हरिदास ठाकुर के साथ में इनका सबसे पहला मिलन होता है और हरिदास ठाकुर का संग से ही यद्यपि ये निर्देशित बैठकर है भक्ति की शिक्षा स्तर सिखा रहे हैं पहले हरिदास ठाकुर का संग का संस्पर्श से ही इनको भगवत भक्ति बढ़ता है। अभी इनके हृदय में जब भगवत भक्ति की जुहार उनके हृदय में जो तरंग आया लेकिन भगवत भक्ति अगर हृदय में प्रकट हो फिर भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्वाभाविक रूप में भक्ति में अगर अनुराग हो అప్సరి చేసేది. ఇంద్రతుల్య ఐశ్వర్యస్తి అప్సరి లేకి భగవత్ భక్తి రూపీ మందాకిని అగర్ కోయి గొంతా లగాయ్ భగవత్ భక్తి రూపీ మందాకిని కోయి గొంతా లగాయ్ తో ఈ ఐశ్వర్య విశ్వ బ్రహ్మాండ కా జో ఐశ్వర్య ఉస్కో సామ్నే ఫీకీ హో జాతా హై ఉస్కో సామ్నే తుచ్చ హో జాతా హై యే భక్తి కే ఏక్ లక్షణ హై ఇస్లియే అభి ఉన్కా మన్ విషయ మే నహీ లగ్తా హై అభి చాహతే హై కైసే మే శ్రీమాన్ చైతన్య మహాప్రభు కే చరణ మే జాఊ చైతన్య మహాప్రభు కే చరణ కో ప్రాప్తి కరూ ఉన్కే హృదయ మే దీప్ ఉత్కంఠ హై లేకిన్ దో పితా హై కేవల్ ఉన్కో ఏక్ హీ బేటా హై పాత్ మే ఔర్ కోయి హై నహీ पिता माता बड़े प्रयास करते हैं महाप्रभु को पास में जब जाते हैं जो जबरदस्ती उनको पकड़ करके ले आते हैं जब बार बार ऐसे किया महाप्रभु उनको कुछ उपदेश दिया बोले रघुनाथ स्थिर याद भर जाओ ना हो बातुल क्रमे क्रमे पाए जीव भव सिद्धु गुण बेटा भगवान का भक्ति आसानी नहीं है स्थिर होकर घर में जाओ हाँ एक साथ में छलांग नहीं लगा देते हैं अभी अंतर निष्ठा करो लोक के बाह्य व्यवहार अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे निभार अंतर में निष्ठा रखो हाँ लेकिन बाहर का जो व्यवहार है जो लौकिक जो व्यवहार को ठीक रखो लेकिन निष्ठा रखो अंतर में जिसको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं बिना जो बाल कर्मणि हाँ पर व्यास ने नारी थी जैसे एक एक पर पुरुष को प्रति आसक्ति जो नारी लेकिन वो घर का दिखाने के लिए घर का काम तो धूमधाम करती है लेकिन मन का संपूर्ण वो परपुरुष के पास में पड़ा हुआ लेकिन उसी तरह लौकिक रीति के लिए तो खूब दिखावे करो लेकिन अपना हृदय संपूर्ण भगवान को दो अगर ऐसे करोगे कैसे ये विषय से तुमको उधार होना पड़ेगा कहते सकाले छल कृष्ण तुम्हारे जोगावे कोई चिंता की बात मत किया करो कैसे ये विषय सुधार हो गए ये भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे तुमको करने का जरूरत है नहीं तुम्हारी जरूरत है हृदय निष्ठा को अभी महाप्रभु ऐसे समझाते हैं अभी महाप्रभु उपदेश पा करके रघुनाथ दास गोस्वामी अभी ऊपर का जो बाजी का व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जिसका माता पिता लगता है हमारा बेटा सही हो गया बेटा हमारा सही हो गया लेकिन एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उपयुक्त समय पा करके पुनः हुए सारे विषय को परित्याग करके महाप्रभु के चरण में चले गए श्री जगन्नाथ पुरी जब श्री जगन्नाथ पुरी में आते हैं उसी समय महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर को हाथ में देते हैं इसलिए उनका एक नाम है स्वरूप रघु कहते स्वरूप रघु क्यों कहते स्वरूप दामोदर कौन है कहते ये ललिता है हाँ ये ललिता है और ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये रति मंजरी कहते जो रति मंजरी ये ललिता की गण में है ये गण में है इसलिए बगैर ललिता की कृपा के राधा कृष्ण के स्वभाव प्राप्त नहीं हो सकता है जब भी मंजरियों का उनको सखियों का सौभाग्य उनको सौभाग्यता है लेकिन जो सेवा में जो अधिकार है सेवा में अधिकार ये मंजरियों का है इसलिए उनका नाम है स्वरूप रघु बोले देखो सभी स्वरूप दाती है रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को कुछ प्रश्न करना चाहते हैं महाप्रभु कहते हैं कि स्वरूप दामोदर मेरे से ज्यादा जानता है मतलब क्या है तो अगर मेरे सेवा को तुम प्राप्त करना चाहते हो क्या करो अगर मेरे को सेवा प्राप्त करना चाहते हो ये स्वरूप दामोदर को पास में जाओ क्योंकि ये ललिता सखी थी कैसे श्री राधा कृष्ण की सेवा रस में जीव का प्रवेश है यदि ये प्रवेश अधिकार कृपा तो ये स्वरूप दामोदर को पता है यही हमारे सेवा में प्रवेश कराएगा अभी उनका नाम हो गया स्वरूप रघु अभी रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु का प्रसाद को हमारे गोविंद महाप्रभु का अधिकृत प्रदान करते हैं लेकिन जब कुछ दिन गया रघुनाथ दास गोस्वामी समझे ये सही नहीं है अभी महाप्रभु प्रसाद पाएंगे उनके लिए हमारे गोविंद जी बनाएंगे बाद में मिलकर देंगे ये सही नहीं भक्तों का सेवा लेना इसलिए उन्होंने क्या किया जगन्नाथ मंदिर को सामने खड़े होते वहां से रात को जो वापस जाते हैं कुछ बचा हुआ प्रसाद वहां पर जो साधु संतों को प्रदान करते हैं अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो वहीं पर खड़े हुए महाप्रभु सुनकर बड़े खुश होकर यही कैसे होनी चाहिए वैराग्यों को दूसरों के लिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ये देने पर कुछ मिलेगा अपना ऊपर रिफर करके स्वयं भिक्षा मांग कर खानी चाहिए अभी महाप्रभु को रघुनाथ जब उसको छोड़ दिए हमारे गोविंद ने कहा प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को सिंह दरवाजा में भिक्षा करना छोड़ दिए ने महाप्रभु का बहुत अच्छा किया क्योंकि ये तो वैसा वृद्धि है जैसे वैसा सोचती है ये पुरुष आएगा तो मुझे कुछ पैसा देगा ये आएगा तो मुझे पैसा देगा ये नहीं समय बर्बाद है कोई आएगा तो देगा इसलिए भावना ठीक नहीं है फिर हुए जाकर के आनंद बाजार में अभी आनंद बाजार में भिक्षा ग्रहण करते कुछ दिन के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो चावल दिखता नहीं सह जाता है उसको फेंक देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी उसको उठा करके रघुनाथ दास गोस्वामी धो करके उसको बीच में थोड़ी जो शाम का नाम से रहता है उसको थोड़ा नमक दे करके वो ग्रहण करते हैं अभी यह चीज को देख करके हमारे स्वर्ग दामोदर ने किया उसको पाए महाप्रभु को बोले प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जो चीज को फेंक देते हैं सड़ जाता है तैलन गैया जिसको खा नहीं पाते रघुनाथ दास गोस्वामी उसको तरह जीविका निर्वाह करते हैं महाप्रभु देखते हैं महाप्रभु रहा नहीं गया महाप्रभु स्वयं एक दिन आए आकर के देखा रघुनाथ वो चावल खा रहे वो सड़ा हुआ चावल खा रहे इतने बड़े ऐश्वर्यशाली क्या वैभव को छोड़ करके कैसे प्रभु का भजन कर रहे हैं महाप्रभु आकर के बोले तुम तो बड़ी हो क्या चीज खाते हो अकेले अकेले खाते हो तो बढ़िया चीज हो तो अकेले नहीं खानी चाहिए दूसरों को देख कर खानी चाहिए महाप्रभु ने क्या किया जो जबरदस्ती महाप्रभु ने एक ग्रास ग्रहण किया जब दूसरे ले रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ पकड़ लिया प्रभु ये आपका ग्रहण यज्ञ नहीं ये तो मेरा ग्रहण यज्ञ है
कौन कौन हाथ ग्रहण किया कौन हाथ ग्रहण किया पकड़ लिया
स्वरूप
दामोदर
स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आपका ये ग्रहण वस्तु नहीं है ये तो आपका ग्रहण ये वस्तु नहीं है इसलिए कहते रघुनाथ है वैराग्य जनक पाषाण के लेखा उनका वैराग ऐसे वैराग इतने बड़े धनाढ्य के होकर के कैसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए कितने त्याग उनका अंदर कितने बैराग लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कहते गुरु जी को पास में आए सब कुछ छोड़ छाड़ करके गुरु जी को पास में आए गुरु जी हम ठीक से कपड़ा लत्ता नहीं देते हैं गुरु जी हमको ठीक से खाना पीना नहीं देते हैं कभी कभी हम भजन के लिए आए हम लोगों को नियम है तब भी मठ मठ में आकर के गुरु जी का ऋणी नहीं होनी चाहिए नियम है हम स्वयं भिक्षा करने के लिए जाए हमारा भिक्षा वृत्ति है भिक्षा करने के लिए जाए जो भिक्षा द्रव्य है उसको ला करके गुरु जी को प्रदान करे गुरु जी अगर कृपा करके हमें कुछ प्रदान करते हैं फिर तो हमारा अधिकार है नहीं तो गिरा गुरु जी को हमारे सप्तम स्कंध में अंतिम में बताया गया ब्रह्मचारी और संन्यास का जीवन कैसे निर्वाह होनी चाहिए यदि सब कुछ वस्तु गुरु जी को प्रदान करनी चाहिए गुरु जी आदेश करे तब हम प्रसाद पा सकते हैं बिना गुरु जी का आदेश के बगैर हम प्रसाद भी नहीं पा सकते हैं और जो कुछ वस्तु लाए हम गुरु जी को चरण में हम समर्पित करें ये ब्रह्मचारियों का धर्म है अगर इसी रूप में कोई अगर ब्रह्मचारी धर्म पालन करता है फिर तो धीरे 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 बढ़ेगा इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े घर के होकर के कैसे हुए जिनका निर्वाह कर रहे हैं उनको देख करके आश्चर्य हो गए अभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी रहा करते थे हमारे सादा सुंदर रोड स्वर्ग दामोदर जी के पास में अभी रघुनाथ हमारे स्वर्ग दामोदर आ करके रात भर महाप्रभु के पास में गंभीरा में कवि जयदेव गीत गोविंद और हमारे विद्यापति के जो रस्म है जो कथा है जिसको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाग में विभावित होकर गंभीरा में जब रहते थे कैसे स्वर्ग दामोदर राय रामानंद कैसे वह चीज को कैसे महाप्रभु का भाव जान करके कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए श्री राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में कैसे उन्मादी और उनको अंदर में कैसे अभिजल संजल बीजल प्रजल को ये जो भाव की जो तरंग है इसी भाव के अनुरूप स्वर्ग दामोदर कैसे वो भाव समझ कर कैसे पद्य गाते हैं और महाप्रभु भावना कैसे बढ़ते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते हैं हमारे जो सादा सन रोड पर वहीं पर रहते हैं और रात भर सोते नहीं आज महाप्रभु के साथ में स्वर्ग दामोदर का क्या डिस्कशन होगा मतलब क्या वार्तालाप होगा वो टक लगाकर बैठे रहते थे जब वो आएंगे उनको मैं पूछूंगा क्या उनको साथ में क्या वार्तालाप हुई है रात भर सोते नहीं थे जब स्वर्ग दामोदर महाप्रभुनाथ परम प्रभाव को बना बढ़ाते लाख लाख में स्वर्ग का मगर चले जाते थे हमारे साथ अमन आश्रम में और राय रामान पर चले जाते थे जगन्नाथ गंगा वाटिका में और रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ तक तक जाते को बैठे रहते थे कब स्वर्ग दामोदर आएंगे हम बात में बताएंगे और स्वर्ग दामोदर आने पर रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते थे आज महाप्रभु के साथ में क्या वार्तालाप हुई है आज कौन सा रवि रह के वार्ता हुई है इसलिए जो कुछ डिस्कशन होता था स्वर्ग दामोदर बोलते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी कर्चा रूप में उन्होंने वर्णना किया कुछ लिपिबद्ध किया है उसको कर्चा में निर्माण वर्णना करते थे ऐसे ही जिस समय स्वर्ग दामोदर और महाप्रभु के दोनों अंतर ध्यान हो गए अभी सर रघुनाथ दास गोस्वामी को रहा नहीं जाता दोनों को विरह में उनको प्राण फटते जा रहे महाप्रभु चले गए स्वर्ग दामोदर चले गए अभी मैं को प्राण ढूंढने का किससे हरि कथा सुनूंगा किसको साथ में कथा सुनूंगा विरह में उन्होंने जगन्नाथ पुरी कैसे छोड़ कर किसे राधा कुंड में आए और राधा कुंड में कैसे विरह में कैसे हुए अपना जीवन को कैसे भजन करते थे राधा कुंड को बीच में बैठ करके और वहीं पर बैठ करके जितने दर्शकों को ये रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड को बीच में इधर राधा कुंड कृष्ण कुंड बीच में बैठ कर जब भजन करते थे श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी का सिर ऊपर में अपना चदर से उनको ढकती थी राधा रानी जिसको सनातन गोस्वामी ने देखा कभी कभी देखा उनको पास में बाघ को पानी पीते हुए और कई से ललित माधव विदर्भ माधव नाटव को पढ़ करके कई से कृष्ण विरह में कैसे तड़पड़ाते थे कई से तड़पड़ा उनका गर्व था पीड़ा भी नवगाल कुटला गर्व से निपास वो कृष्ण प्रेम में कैसे और रघु गोस्वामी ने देखा ये ग्रंथ लेकर तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया ये ग्रंथ को पढ़ करके तो महाविरह में कृष्ण प्रेम की ज्वाला में तड़पड़ाता है इसलिए उन्होंने ये दान के लिए कौमुदी ग्रंथ को ई करके उन्होंने इसी तरह से कहा देखो वो ग्रंथ को हमको देखना है पढ़ दो ये ग्रंथ को लो इसलिए उन्होंने दान के लिए कौमुदी देख करके ये ग्रंथ को ले लिया फिर दान के कौमुदी उनको राधा कृष्ण का तरह तरह का हास्य रस है रघुनाथ दास गोस्वामी जब जब उसको पढ़ते दिन भर हंसते रहते इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर बैठ करके एक ग्रंथ है जिसका नाम जो ग्रंथों को उन्होंने वर्णना किया जिस ग्रंथों के अंदर में
तो मालन
सभा बलि जिस ग्रंथ में हुए विलाप पुष्पांजलि उसमें ग्रंथ है विलाप मतलब राधा कृष्ण के विरह में जो उनका विलाप है पुष्प मतलब पुष्प अंजलि मतलब हाथ में उनको एक एक श्लोक ही उनको एक एक पुष्प है और एक एक पुष्प को हुए राधा कृष्ण के चरण में श्री ईश्वर जी के चरण में अर्पण करते हुए जो मंजरी भाव की क्या है मंजरी भाव कहते हैं किसे महाप्रभु जगत में क्या देने के लिए आए वो उन्नत उज्जवल रस क्या है फिर कोई समझना चाहते हैं तो विलाप पुष्पांजलि कर दी जाए इसलिए उसमें दिव्य वर्णना है सोनिया में बहुत सारे ग्रंथ है इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने साधक एवं सिद्ध ये दोनों चीज रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोगों से सिखा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी आज का दिन तो निर्वाह है वे हमारा परम कृपा करे जैसे हुए महाप्रभु के चरण में राधा गोविंद के चरण में जैसे उनका अनुराग है इसलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी और उसी परंपरा में हमारे महाराज जी हम लोगों को घर में आशीर्वाद करें कभी ना कभी उनको आदर सको हम लोग ग्रहण करते हुए जीवन में भजन कर पाए
परमिशन था वो कहाँ है वो मालूम की कॉपी दे दी हाँ दे दी कॉपी दिया या मूव
फोटो शेयर किए मतलब मूल की हाँ
मूल का
from the
from everything, whatever he had. And he always tried to leave his family and wants to always stay with the devotees. For that reason, he tried so many times to come out from his home. He was trying so many times. When Sriman Mahaprabhu saw this, and when he met with Sriman Mahaprabhu in Shantipur, in the house of Advaita Charya, over there Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him some instructions that Sthir hoya ghare jao na ho vatul, that you must determine in your heart that, oh yes, the path which I am following is alright, it's a great path, but still at the same time, don't become bewildered. Markat vairagya na karo lok dikhaiya, yatha yogya vishay bhunjo anasakt hoya. You should not follow the path of false renunciation. Go back to your house and practice very nicely. Externally, you should do all the activities like an ordinary person he is doing in his house, all the dealings, all the activities. But internally, in your heart, you should have great attachment for the bhakti of Sri Radha and Krishna. So Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him these kind of instructions. Like Shripad Rasanatha was explaining that Srila Sanatana Goswami also got same kind of instruction from Sri Chaitanya Mahaprabhu, that par vyasin nari, like a woman, if she has love for a man another than her husband, then what she does, she is always doing all the activities of her house very nicely, so that nobody can even suspect at all that, oh, she has love and affair for somebody else also. So, but always in her heart, she is thinking about her lover. So in the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing Srila Raghunathas Goswami that in your heart, you should always have love and affection, deep attachment for Sri Radha and Krishna. But externally, you pretend like a ordinary person, like a person stays in his house. So you should do always like this. So by getting the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu like this, Srila Raghunathas Goswami came back to his house and again started living like an ordinary simple person. Then by seeing his activities like this, his parents, they became very happy. Oh, now our son, for some time he was going to become a crazy person, but now he is alright. Now that ghost which entered in his mind now has gone away. So they became very happy and pleased with him. But after some time, again what happened, that near to his village, Sri Nityanand Prabhu again came to Panihati Gam. By the permission of his parents, he came to meet with Sri Nityanand Prabhu. And then, by the blessings of Sri Nityanand Prabhu, when he got his mercy, after some time he got a chance to leave his house. Then he immediately ran to Jagannath Puri to meet with Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when he came and met with Sri Chaitanya Mahaprabhu, then immediately Sri Chaitanya Mahaprabhu also gave him in the hands of Srila Swarup Damodar Goswami. From that day, Raghunathas Goswami was known as Swarupe Raghu, because there were two or three devotees by the name of Raghunathas Goswami. That's why he was known as Swarupe Raghu, means the Raghunath of Swarup Damodar. Who is Swarup Damodar? Swarup Damodar is Dalita Sakhi. And who is Srila Raghunathas Goswami? In his Swarup is Rati Manjari. So by offering Srila Raghunathas Goswami in the hand of Sri Swarup Damodar, Sri Chaitanya Mahaprabhu is establishing one another truth, that unless and until one has the mercy of Lalita Sakhi, unless and until she gave qualification for the service, no one can enter into the service of Sri Radha and Krishna. So now Raghunathas Goswami came to Jagannath Puri, and under the guidance of Sri Raghunath Swarup Damodar Goswami, he started following the path of bhakti. In the beginning, what he did, even though he was staying with Sri Swarup Damodar Goswami, but he was taking prasadam with Govinda Prabhu. Govinda Prabhu used to cook for Sri Chaitanya Mahaprabhu, and after Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunathas Goswami and Govinda Prabhu, they used to take prasadam together. But after some days, a thought came in the mind of Srila Raghunatha Goswami that, oh, I have come to Jagannath Puri to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. But what I am doing here? Govinda is cooking for Sri Chaitanya Mahaprabhu and I am accepting his service. So it is not proper. So what he did? He stopped taking prasadam over there. Even though it was the remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He started taking bhiksha by standing on the gate of Jagannath temple, Singha Dwar. And over there, he was accepting sadhu vritti, bhiksha vritti, accepting alms, whatever comes automatically. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to know this, then Sri Chaitanya Mahaprabhu praised Raghunatha Goswami by saying that, yes, vairagi hoya deva, no. महाप्रभु ने वहां पर बोला कि जब स्वरूप महाप्रभु ने महाप्रभु के प्रसाद पाना बंद कर दिया और सिंह द्वार पे भिक्षा करनी शुरू कर दी. वैरागी कृत्य है नाम संकीर्तन मागिया खाया करे उदर भरण. दैट व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ रिनाउंसेड पर्सन. हिज ड्यूटी इज टू ऑलवेज चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड एंड समहाउ और अदर वट एवर कम्स ऑटोमेटिकली और वेरी सिंपली लाइक बैगिंग वट एवर कम्स ही शुड फील हिज स्टमक बाय दिस. So, the Mahaprabhu praised him like this. But after some days, he was standing there and accepting whatever came automatically. After some days, he again left that. And then he started taking rice, which was thrown by the shopkeepers of Jagannath temple. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu again praised him. Why? Because standing at one place, and looking at the faces of other persons, that, oh, this person looks like a rich person, he will give me something. Oh, this person has given me yesterday, but today also he will give me. So many thoughts come in. When somebody don't give, oh yes, I was thinking he will give, but he's not giving. So many thoughts comes. So how can one remember the Lord?
In brief.
So after that he started accepting rice, which was thrown by the shopkeepers. When Sri Swarup Damodar saw this, Raghunatha Goswami is taking this kind of rice, he felt, once he took the rice from Raghunatha Goswami, and when he told Sri Chaitanya Mahaprabhu about Raghunatha Goswami, then Mahaprabhu also came to Raghunatha Goswami, and he said that, oh Raghunath, you are taking such a wonderful things, such a delicious things. So by force, Mahaprabhu also took some rice, and one time he took. When he was going to take another time, Srila Swarup Damodar Goswami stopped him. He said, no Prabhu, it's not for you. Please don't take it. So by this, we can see that what kind of renunciation Sri Raghunatha Goswami had by the association of pure devotees. It is automatically, it is the symptom of the association of pure Vaishnavas that this thing automatically comes, vairagya, renunciation. But if it is not coming, then we have to think about it, that, oh, we are associating or not. Externally we are associating, but not internally. So, in brief, Srila Prasanna Prabhu explained that, oh, nowadays what we are doing, brahmacharis or devotees who take shelter of Srila Gurudev, they come to the mutt and they think, oh, now we have accepted his shelter, now his duty is to give us everything, clothes and all the facilities, whatever even we had not expected in our home. So why is not going to provide us? Why? Because we have taken shelter, now it is his duty. But he explained that in Srimad Bhagavatam, it is in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, it is explained that what is the dharma, what is the religion, what is the duty of a brahmachari or a person who takes the shelter of guru. His duty is to always hear his instructions very clearly, and he has to accept bhiksha vritti. He has to go out and beg alms. And whatever he collects, his duty is to offer 100% everything at the lotus feet of Srila Gurudev. And then, by his own mercy, if Gurudev, he offers something to you, then you are supposed to accept and have it. Otherwise, not. So there are so many instructions which was given by there are so much discussion about his Swarup, how he stayed in Puri when Swarup Damodar left, Sri Chaitanya Mahaprabhu left this world, what was his condition, how deep separation he was feeling for them. Then he came to Radhakund and then feeling so much separation. So he explained so many things, and now Srila Gurudev will explain. Hare Krishna.
We also explain how Swarup Damodar used to be with Chaitanya Mahaprabhu and what discussions used to be there. He used to tell daily to Raghunath Das Goswami, and he used to write in his word that is called Karcha. So by this Chaitanya Charitamrita has been done, and so many things. Now time is very short. You should explain about Srila Krishna Kaviraj Goswami. Very short. After you can come, or from there, no. Brief.
ॐ ज्ञानतिमिरान्मिथस्य ज्ञानं जनसदाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. First of all, I'm offering my dandavat pranams to the lotus feet of my beloved Gurudev, Nityalila, Pravishna, or Vishnupad, Astrotara, Sata, Sri Shima, A.C. Bhaktivedanta, Swami Maharaj, Prabhupada, and to the lotus feet of my beloved Sikhsha Gurudevs, Nityalila, Pravishna, or Vishnupad, Sri Shila, Bhakti Raksha, Sri Dhan, Goswami Maharaj, and or Vishnupad, Astrotara, Sata, Sri Shima, Bhaktivedanta, Narayan, Goswami Maharaj, and to all the Vaishnavas, Vaishnavas. So today is also the divine transcendental disappearance day of Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Pad, and his wonderful glories can be understood especially by seeing his contribution that he has given to the whole Gaudiya Vaishnava Sampradaya. He has written this greatest of all wonderful Shastras, Sri Chaitanya Charitamritam and Govinda Lilamritam, very, very exalted Shastras by which he told all the beautiful pastimes and Siddhanta of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the eternal divine pastimes of Radha Govinda, Radha and Krishna in their divine Leelas in Vrindavan. So, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, who was born in Bengal, he had an experience in his life how he came to Sri Prajadam Vrindavan Dham and became one of the followers of Srila Rupa Goswami Pad and Srila Raghunath Das Goswami, one of the chief followers. And in his earlier life, there was an experience that he himself told in Sri Chaitanya Charitamrita. How he received the mercy of Sri Nityananda Prabhu, which enabled him to attain the shelter of Sri Vrindavan Dham. He told that his brother was like a priest in one temple. And his brother had some faith. He had some shraddha in Sri Gauranga Mahaprabhu. But he had very little faith in Sri Nityananda Prabhu. And this was a very disheartening fact to Srila Krishna Das Kaviraj. So one day, one of the great Vaishnavas, great devotees, who was a follower of Sri Nityananda Prabhu, came there to the temple where Krishna Das Kaviraj Goswami was and his brother. And his name was Miniketana Ramdas. And Miniketana Ramdas was always absorbed in the transcendental love and affection for Gauranga Nityananda. And when he came there, the brother of Krishna Das Kaviraj Goswami to him. And by this, Minikethan and Ram Dass could also understand that this person, he did not have proper regard for Sri Nityananda Prabhu. So Minikethan and Ram Dass became upset at that time. And with his transcendental anger, he broke his flute. And in this way, he left that place and was very, very disturbed that his worshipable Sri Nityananda Prabhu had been so insulted in this way. And so Krishnadas Kaviraj Goswami Pad explains that he himself was also disturbed by this fact. And his brother, after that time, his brother fell down from his spiritual position. But that night, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami had one dream. And in this dream, Sri Nityananda Prabhu himself appeared. And he appeared in a very, very beautiful form, dressed like a cowherd boy. And his body was somewhat sham color. And he was dancing, and so all of his cowherd friends were dancing and singing around him, doing Harinam Sankirtan. And Nityananda Prabhu, with his outstretched arm, he told to Krishnadas Kaviraj Goswami Pad that now you should go to Vrindavan. You should leave this place, and immediately you should go to Vrindavan, and there you will attain all things. So in this dream, when Krishnadas Kaviraj Goswami woke from this dream, he understood that Nityananda Prabhu had given his utmost mercy to him. And immediately he left that place and journeyed to Sri Vrindavan Dham. And Krishnadas Kaviraj Goswami lived in Vrindavan under the guidance of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and especially Raghunath Das Goswami Pad. And when he was staying there in Vrindavan doing his intensive bhajan, he associated with Raghunath Das Goswami. And just as we have heard, Srila Raghunath Das Goswami had heard so many teachings and personally witnessed so many pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. And all of these teachings that he heard from Swarup Damodar Goswami and all of these memories of Mahaprabhu were written in his own notes called Kavachas. So these notes and his personal association he shared directly with Krishnadas Kaviraj Goswami. And in this way, Krishnadas Kaviraj Goswami was able to write this Sri Chaitanya Charitamrita. And also, Krishnadas Kaviraj Goswami was requested by the community of all the Vaishnavas in Braja, who were so exalted associates and devotees of Chaitanya Mahaprabhu at that time. They were very much feeling separation mood because Mahaprabhu had left this world. And they wanted to hear and they wanted to relish and taste all the later pastimes of Mahaprabhu, because the only biography that had been written up to that point of Mahaprabhu's life was Sri Chaitanya Bhagavat of Srila Vrindavan Das Thakur. So they requested that Krishnadas Kaviraj Goswami Pad should write these beautiful narrations of Mahaprabhu's later pastimes, which were not described in Vrindavan Das Thakur's Chaitanya Bhagavat. So in this way, they requested him, and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami requested the blessings and the permission of all the Vaishnavas there in Braj at the time. And he went especially to the temple of Sri Madan Mohan, the same temple that now we can go and visit. It was there at that time. And he went and he prayed before the deity of Madan Mohanji. And then at that time, the garland of Madan Mohan fell down, and the Bajari came and put this on the neck of Krishnadas Kaviraj Goswami. And this was the sign that, yes, now you have the permission to write the Sri Chaitanya Charitamrita. So in this way, Krishnadas Kaviraj Goswami resided in Braj under the guidance of Rupa Raghunath Goswami's. And he wrote this incredible Chaitanya Charitamrita, which tells all of the important pastimes of Mahaprabhu in his Madhyalila after taking sannyas especially, and in his Antyalila when he was living there in Jagannath Puri, and how he experienced all these divine ecstasies and separation mood from Krishna in the mood of Srimati Radharani. And one thing that Krishnadas Kaviraj Goswami explains, that when he was writing this Chaitanya Charitamrita, he did not know how long he would remain alive in this world, because at the time when he began writing, he was of very old age. And as he was writing the Chaitanya Charitamrita, especially when he reached the beginning of the Madhya Lila pastimes, he summarized all of the later pastimes of Antya Lila and Madhya Lila just in the first two chapters, so that just in the event that he would not remain in this world, that the devotees would know something of these later pastimes. But somehow by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and by the mercy of Madan Mohanji, he was able to continue writing even in old age. And at one point he describes that I am writing and my hand is unsteady. It is shaking because of my old age. My pen is almost slipping from my hand. I am almost nearly blind. But somehow I am going on writing this Chaitanya Charitamrita. And this is a very astonishing fact to me. So by this I can understand, I am not writing this Chaitanya Charitamrita. Actually, Madan Mohanji, he is directly writing this. Yes, Madan Mohanji himself is writing. So the astonishing achievement of Krishnadas Kaviraj Goswami, if he had not written this Chaitanya Charitamrita, we would not know all of this glorious Siddhanta, everything that Srila Gurudev is giving, all of our Rupa Nuga Acharyas are giving in this line. It is so much based upon this Praman and this evidence and this beautiful presentation of Sri Chaitanya Charitamrita. So we are eternally indebted to the lotus feet of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad, who in Krishna Lila is one of the intimate associates of Radha and Krishna. Kasturi Manjari. So just these eternal associates of Radha and Krishna came down into this world to assist the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, to give his mercy to the entire world of Vaishnavas. So on this blessed disappearance day, we bow down at his lotus feet and pray for his causeless mercy. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pada Ki Jai.
তোমরাই পুষ্ট তুম বলো তো রঘুনাথ পাঠ দু মিনিট হিন্দি মে বলো
গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ চরণ মে আপনি আস জতাই হ্যাঁ কি চরণ মে জিনকে আশা হ্যাঁ এসে ব্যক্তি চেতন চেতামৃত কাজ বর্ণন কর রে বতা जैसे कि कीर्तन में कृष्णदास कविराज रसेन भंडारे जतन थैल प्रेम हेम कुंभ भरी जो कि रस के भंडारी है स्वर्ण कुंभ में चेतन चेतामृत को भर के रखा है ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी किए और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जिनके कथा हम लोगों ने सुना है ऐसे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो की रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कि तपन मिश्र के पुत्र हैं और
तपन मिश्र के पुत्र हैं
लिखा है
तो ये मिश्र ना होकर के ये भट्ट कैसे हो गए
जब ये महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी पूर्व बंगाल गए थे उस समय एक दिन तपन मिश्र ने स्वप्न देखा कि कोई एक दिव्य पुरुष आए हैं और कुछ हमें उपदेश सुना रहे हैं उस समय दूसरे दिन सुबह तपन मिश्र वहां पर पहुंचे अपने पुत्र रघुनाथ के साथ में और महाप्रभु जी से मिले तब महाप्रभु जी ने कहा कि मैं जब सन्यासी बन करके वृंदावन को जाऊंगा तब आपके घर में काशी में निवास करूंगा। उस समय तपन मिश्र को आदेश दिया था, तब वे पूर्व बंगाल से काशी में आए, वहाँ निवास किए और महाप्रभु जी जाते आते वृंदावन के लौटते समय वहाँ तपन मिश्र के घर में रहे और रघुनाथ भट्ट जी ने महाप्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझको कृपा करें, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तब महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया, नहीं, जब तक पिताजी हैं तब तक तुम उनकी सेवा में रहो और उनके साथ में रहो। इस प्रकार वे काशी में भी आए, तपन मिश्र के साथ में रहे। इसके पश्चात जब महाप्रभु जी आए तब उन पर कृपा की और वे वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर के निवास किए। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, गोसाई चरण बंदन, जहाँ भैसे विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। ये छह गोस्वामी जो कि ब्रज में निवास किए, महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति ग्रंथों का प्रणायन, श्री विग्रह का प्रकाश, लुप्त तीर्थ वृंदावन धाम का उद्धार और भजन आदर्श को स्थापित करना, इस प्रकार चार कार्यों को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वे श्रीमद भागवत की व्याख्या करते थे और सभी गोस्वामी लोग और बड़े बड़े संत पुरुष सभी लोग उनके भागवत को सुना करते थे। इसी प्रकार वे भागवत के सबसे बड़े व्याख्याकार बने और ब्रज में रह करके सर्व गोस्वामियों में एक गोस्वामी के रूप में वे परिचित हुए हैं। आज उनके चरणों में हम सभी श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करते हुए नमन करते हैं।
What he told? You understand?
So today is disappearance day of Sri Raghunath Bhatta Goswami. One of our six Goswamis, one of them was Raghunath Bhatta Goswami. He Sripati in Vrindavan. So Sripati Tirtha Maharaj told Raghunath Bhatta Goswami was the son of Tapan Mishra. Tapan Mishra was inhabitant of Bangladesh. Now it is in Bangladesh.
No. আমার তো ভট্টর নাম শুনলে মনে হয় দক্ষিণে ছিল, ওখানে থেকে বসবাস করতে এখানে এসেছিল। হ্যাঁ, দক্ষিণ দেশের লোক।
I will come to Kashi and you will host me. After hearing this Mahapu order, Tapan Mishra left Purvabanga and went to Kashi. And when Mahapu delivered Prakashananda, at that time he met with Tapan Mishra. And he ordered to Raghunath Bhatta, Raghunath Bhatta has cherished desire to meet Mahaprabhu. And Mahapu told, unless until when your father is in this life, in this world, you will serve him. So, because his father is devotee, though he mentioned Srimad Bhagavatam, that Guru Nasasat, Sajano Nasasat, etc. in this slok, about Guru and Pita, father and mother, who are non-devotee, for them, it's strictly prohibited not to serve them. But is our relative, especially parents of devotee, we have to serve them. So, Mahapu ordered, don't marry, and don't criticize any others. So when your father will give up this award, then you can come and be with me. The, prior to that, Sripad Rasamdaru told that Swarupa Raghu means Das Goswami became Raghu of Swarup Damodar. Mahapu had three Raghus. three Raghunath. One is Raghunath or Sarvagamagat Prabhu, another Raghunath Bhatta, third one Vaidya Raghunath, there are three Raghunath. So, Raghunath Bhatta Goswami used to recite Srimad Bhagavatam, and other Goswamis, headed by Rupa and others, and other Vaishnavas of Vrindavan, used to assemble there to listen his class. Once, Raghunath Bhatta Goswami was reciting Srimad Bhagavatam, then so many Astasattvic Bhav have seen in others' body, but Rupa Goswami was still calm and quiet. So everybody thought, how come Astasattvic mood is coming in other Vaishnavas, but Rupa Goswami is still calm and quiet? So someone wanted to test, is alive or not? What is the cause? Someone went and keep his hand under his nostril. Immediate blister come. Why so? Because he is so much absorbed in Vidaha mood. And he is so great, his mood is so great, none can understand from externally. It mentioned in scripture, Gandusa Dalamatte na Safari Phal Parayate. If there is little bit water, then one fish can make it dirty. But when in specific ocean, then big whale cannot make it dirty. In same way, Rupa Goswami's mood is so deep, none can understand very easily from externally. So today, Raghunath Bhatta Goswami Tirubhaktithi, and about that, our Goswami Prabhu has taught Sankha Pulvaka Namo Gamino Tibi, how they used to spend their life. Always they chanting their fixed, complete round, fixed round, and doing pranam to Vaishnavas, and sometimes if due to the separation, hey Radhe Vaja Devi Ke by this way they are lamenting. So we have to take lesson from his life history and his advice, how to do sadhan bhajan, and one day will come, then under the guidance of Gurudev, he can respect Goswami's properly, and understand their mood, and pray to Gurudev, please bestow your mercy, and I can understand your mood, how you are serving Sada Goswami and serving Mahaprabhu and Divine Kapil. Hare Krishna. Hare Krishna. ভারত থেকে যে সমস্ত দর্শনার্থীগণ এসেছেন তারা বলেছিলেন নাম লেখানোর জন্য, এখনো নাম লেখাননি, কৃপা করে আপনাদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিন, নয় আপনাদের জন্য বাসের ব্যবস্থার কোনো অসুবিধা হবে। Some devotees come from abroad. Some of them request me, they want to meet with Gurudev. So I am requesting them, either they can meet tomorrow 10 AM or tomorrow after 4:30 PM. So only for newcomers who have not met with Gurudev, please give them chance. Who has met already, don't be obstacle for them. Gurudev will meet everyone, don't worry gradually. Hare Krishna.
Hare Krishna. We are very happy. And Sri Guru expressed several times how many devotees are coming.
Mangla thike esheche.
We want to welcome all of you. And we hope that we will be able to serve you and make your parikrama very successful. So always we should remember that we are under the guidance of Srila Gurudev and Vaishnavas, senior Vaishnavas. And our humble request is that please all try to offer some cooperation so that everything will be successful. First of all, register yourself.
Whether brahmachari, sannyasi, or anyone, they should register their name that we will count that how many devotees are there.
So all devotees, especially the devotees who have come from abroad, register yourself, give a copy of your passport, photo page, and also your visa page, and help to pay your registration fee so that we can organize everything.